एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी,
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी।
यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा,
यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा।
महिमा महिमा
महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी,
महिमा महिमा हो तेरी,
महिमा महिमा हो तेरी।
खाने से तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से,
तेरे मार खाने से तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
पूरा हुआ। नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं परमेश्वर का सेवक भाई रॉबिन्सन कुजूर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे जब आप उसके वचन को सुनते हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं इस घड़ी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो हम सबों को आशीष दे जब हम तेरे वचनों से सुनते हैं। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें मदद कर कि तेरे वचन को सुनकर समझ सके और तेरे रास्ता में चलने सके। उनके जीवन को तेरे प्रेम से भर दे और मेरे संग हो पिता, तेरा सामर्थ दे, तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर ताकि मैं तेरा वचन को अच्छी तरह से बतला सकूँ जो सबके लिए आशीष लाए। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का संवाद का शीर्षक है पूरा हुआ। मसीह ने अपने जीवन को तब तक पिता को नहीं दे दिया जब तक उसने अपने उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर लिया जिसके लिए वह इस जगत में आया था, और अपने प्राण को देते समय उसने कहा था पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30। युद्ध जीता जा चुका था, उसका दाहिना हाथ और पवित्र भुजाएं उसे विजयी बना चुकी थी। एक विजयी के रूप में उसने अपने झंडे को अनंत ऊंचाई पर चढ़ा दिया। क्या स्वर्ग में स्वर्गदूतों में खुशियां नहीं मनाई जा रही थी? मुक्तिदाता की विजय में पूरे स्वर्ग की विजय थी। शैतान पराजित हो गया और जान गया कि उसके साम्राज्य का पतन हो चुका है। स्वर्गदूतों और निष्पाप दुनिया वालों के लिए इस वाक्य का मतलब कि पूरा हुआ बहुत ही गौरवपूर्ण बात थी। यह उनके लिए और हम सब के लिए बहुत महत्व की बात थी कि वह उद्धार का महान कार्य पूरा हो गया था। हमारे साथ वे भी मसीह के विजयी प्रतिफल में साझेदार हैं। शैतान के सही चरित्र को स्वर्गदूत और पाप रहित दुनिया वाले लोगों को तब तक नहीं मालूम हुआ था जब तक कि यीशु की मृत्यु नहीं हुई थी। महाधर्म त्यागी अपने आप को धोखे के ऐसे जाल में लपेट रखा था कि यहाँ तक कि स्वर्गीय पवित्र जन भी उसकी असलियत को भांप नहीं सके थे। उन्होंने उसके विद्रोह की सही प्रकृति को पूर्ण रूप से नहीं जाना था। वह एक अति सुंदर और शक्तिशाली व्यक्तित्व और महिमा वाला था जिसने अपने आप को परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर लिया था। लूसीफर के लिए परमेश्वर यहोवा कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर अश्वांग सुंदर है। यजकेल 28:12। लूसीफर छाने वाला अभिषिक्त करूप था। वह परमेश्वर की ज्योति के सामने खड़ा रहता था। जितने भी सृष्टि द्वारा रचे गए थे वह उनमें सर्वोत्तम था और संसार को परमेश्वर के उद्देश्यों को बताने के काम को करने वालों में सबसे आगे था। उसके पाप करने के बाद उसकी धोखा देने वाली शक्ति और अधिक धोखेबाज बन गई थी और उसकी असलियत को जानना और भी कठिन हो गया था, क्योंकि पिता के साथ वह महिमामय स्थान रखता था। जैसे एक कंकड़ धरती पर फेंकते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने शैतान और उससे सहानुभूति रखने वालों को बड़ी सरलता से नष्ट कर दिया होता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। विद्रोह को बलपूर्वक नहीं दबाया जा सकता है। बलपूर्वक कार्य करने का सिद्धांत व शक्ति का प्रयोग शैतान के राज्य में ही पाया जाता है। परमेश्वर यहोवा के राज्य का सिद्धांत ऐसा नहीं है। उसकी महानता तो भलाई करने, दया और प्रेम दिखाने में है और ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करने में इन्हीं साधनों का उपयोग करता है। परमेश्वर का शासन नैतिकता का है और इसे चलाने के लिए प्रेम और सच्चाई की ताकत चाहिए। परमेश्वर का उद्देश्य था कि अनंत सुरक्षा के आधार पर ही हर चीज का निर्णय किया जाए और स्वर्गीय सभा ने यह फैसला किया कि शैतान को अपने चरित्र को सुधारने का अवसर दिया जाए और यही सिद्धांत परमेश्वर के राज्य का आधार है। शैतान ने दावा किया था कि उसके सिद्धांत परमेश्वर के सिद्धांत से बहुत ही उत्तम है। शैतान को अपने सिद्धांत पर चलने का अवसर दिया गया ताकि पूरा स्वर्गीय संसार उसे देख सके। शैतान ने मनुष्य को पाप करने के लिए उसकाया और परमेश्वर के उद्धार की योजना का आरंभ हुआ। 4000 वर्षों तक मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाने के लिए मसीह अपना कार्य करता रहा और शैतान उसे बिगाड़ने और नीचे की ओर ढकेलने का कार्य करता रहा और स्वर्गीय संसार इसे देखता रहा था। जब यीशु इस जगत में आया तो शैतानी शक्तियां एक होकर उसके विरोध में खड़ी हो गई। जब वह एक बच्चे के रूप में बैतलहम में आया तो बल प्रयोग करने वाले ने उसे समाप्त कर देने की कोशिश किया। एक शुद्ध और सच्चा बालकपन, निर्दोष जवानी, सेवकाई के काम को करने की तैयारी और निष्पाप बलिदान देने के लिए जीवन बिताने से रोकने में शैतान ने हर प्रकार के साधन का इस्तेमाल किया था, परंतु उसकी हार हो गई थी। वह यीशु को पाप में नहीं ढकेल सका था। वह यीशु की हिम्मत को भी नहीं तोड़ सका था और ना ही उन कामों को करने से अलग कर पाया जिसे करने के लिए वह पृथ्वी पर आया था। जंगल से लेकर कलवरी तक शैतान के क्रोध भरी आंधी के थपड़े उस पर पड़ते रहे, परंतु जितनी ही निर्दयता से उस पर लगे उतनी ही शक्ति के साथ परमेश्वर का पुत्र अपने पिता से चिपकता रहा और खूनी मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ता रहा। उसको हराने और दबाने की शैतान की सारी कोशिशें उसे और पवित्र तथा निर्दोष बनाने में सहायक सिद्ध हुई। पूरा स्वर्ग और दूसरी निष्पाप दुनिया के लोग इस संघर्ष के गवाह थे। कितनी दिलचस्पी और उत्कंठता से वे लोग उस अंतिम संघर्ष के दृश्य को देखे होंगे। उन्होंने मुक्तिदाता को गतसमनी में जाते हुए देखा जब उसकी आत्मा पर आतंक का अंधेरा छा गया था। उन्होंने उस करुण रुदन को भी सुना था, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। मत्ती 26:39। जब पिता की उपस्थिति उससे दूर हट गई तब उन्होंने देखा कि वह कितना व्याकुल हो गया था और मरते दम तक संघर्ष करता रहा। उसके रोएं रोएं से खून पसीना बनकर बूंदों के रूप में जमीन पर गिरता रहा था। उसके होठों से 3 बार अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना निकली थी। तब स्वर्ग उस दृश्य को और नहीं देख सका। परमेश्वर के पुत्र को शांति और तसल्ली देने के लिए स्वर्ग से संदेश वाहक भेजा गया था। स्वर्ग ने देखा कि किस प्रकार से उसे विश्वासघाती द्वारा हत्यारी भीड़ के हाथों में सौंप दिया गया, एक कचहरी से दूसरी कचहरी तक लाते जाते समय किस तरह से उसे सताया गया, उसकी हंसी उड़ाई गई, उस पर ताने मारे जा रहे थे। उसके सताने वालों द्वारा उसके जम को लेकर निष्ठापूर्ण तानों को भी स्वर्ग ने सुना था। स्वर्ग ने यह भी देखा था कि किस प्रकार से एक प्रिय चेला कसम खाकर उसका इनकार करता है। उसने शैतान के क्रोध भरे कामों और मनुष्य के मनों पर कब्जा कर लेने को भी देखा था। ओह, कितना भयावह दृश्य! आधी रात के समय गतसमिनी में मुक्तिदाता को घेर लिया गया। इधर से उधर घसीटते हुए दो बार न्यायालय में, दो बार महायाजक के सामने पेश किया गया, दो बार महासभा के सामने प्रस्तुत किया गया, दो बार पिलातुस के सामने लाया गया और एक बार हेरोदेस की कचहरी में पहुंचाया गया। ठट्टेबाजी की गई, कोड़े लगाए गए, निंदा की गई, अपराधी ठहराया गया और क्रूस के दंड स्वरूप यरूशलेम की पुत्रियों का विलाप और क्रूर भीड़ के नारों के बीच क्रूस के भारी बोझ को उस पर लाद दिया गया। मसीह को क्रूस पर टंगे हुए घायल माथे से खून बहते और खून की बूंदों का पसीने के साथ भावों पर चुहचुहाते हुए स्वर्ग ने बड़े आश्चर्य और दुख के साथ देखा। उसके हाथों और पैरों से खून बह बह कर उस चट्टान पर टपक रहा था जिसमें क्रूस को खड़ा करने के लिए गड्ढा खोदा गया था। उसके शरीर के भार से नीचे लटक जाने के कारण ठोकी गई कीलों से हाथ का मांस खींच कर जगह बना लिया था। उसकी सांसें गहरी और तेज चल रही थी जबकि उसकी आत्मा संसार के पापों के बोझ तले दबकर छटपटा रही थी। अपने महासंताप और कष्ट के बीच भी जब मसीह ने प्रार्थना किया तो पूरा स्वर्ग चकित रह गया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। लुका 23:34। फिर भी वहां पर ऐसे मनुष्य थे जो परमेश्वर की सूरत पर रचे गए थे परंतु परमेश्वर के इकलौते बेटे को नष्ट कर डालने के लिए तैयार खड़े थे। स्वर्गीय संसार के सामने यह कैसा कष्टपूर्ण दृश्य था। अंधकार का प्रधान और उसके अधिकारी क्रूस के चारों ओर जमा थे। अविश्वास और दुष्टता की भावना को मनुष्यों के हृदयों में भर रहे थे। जब यहोवा ने इन लोगों को अपने सिंहासन के सामने खड़े रहने के लिए रचा था तब वे अत्यंत सुंदर और महिमामय थे। उनकी पवित्रता और सुंदरता उस स्वर्गीय स्थान के अनुकूल थी। वे परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर और स्वर्ग के स्वर्ण कवच को धारण किए हुए थे। वे सब यहोवा के सेवक थे परंतु उस महिमामय सराफिम को जो कभी स्वर्गीय दरबार में सेवकाई का कार्य करता था कौन पहचान सकता था कि वह एक दिन पाप में गिर जाएगा। शैतानी ताकतें बुरे लोगों के साथ मिलकर वहां पर लोगों की अगुवाई कर रही थी और कह रही थी कि मसीह सबसे बढ़कर पापी है और उसे अत्यंत ही घृणा का पात्र बना रही थी। जिस समय मसीह क्रूस पर टंगा हुआ था और जो लोग उसकी ठट्टेबाजी कर रहे थे उन सभी पर प्रथम विद्रोही की आत्मा का रंग चढ़ चुका था। शैतान ने उनके मुंह में अनचाही और दुष्टता की बातें भर दिया था। उसने उन्हें ताना मारने के लिए उसकाया परंतु इतना सब कुछ करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। यदि मसीह में कोई भी पाप पाया गया होता, अपने ऊपर हो रहे भयानक अत्याचार से बचने के लिए यदि वह किसी एक भी परीक्षा में गिर गया होता तो परमेश्वर और मनुष्य का दुश्मन विजयी हो गया होता। मसीह अपना सिर झुकाकर प्राण दे दिया परंतु वह अपने विश्वास में तथा परमेश्वर को समर्पण कर देने में स्थिर रहा। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 12:10 में हम इसे पाते हैं। शैतान ने देखा कि उसका भेद खुल चुका है। स्वर्गीय संसार और परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने उसके शासन का पर्दाफाश हो गया है। उसने अपने आप को हत्यारे के रूप में जाहिर कर दिया है। परमेश्वर के पुत्र के खून को बहाने के कारण से उसने स्वर्ग में रहने वालों की सहानुभूति खो दिया है। अब उसके कामों पर प्रतिबंध लग गया था। अब चाहे जिस प्रकार का स्वभाव वह दिखलाए, स्वर्ग के स्वर्गदूत स्वर्गीय दरबार में अब उसका इंतजार नहीं करेंगे। शैतान और स्वर्गीय संसार के बीच की सहानुभूति की अंतिम कड़ी भी टूट चुकी थी। इतना होते हुए भी उसी समय शैतान का नाश नहीं किया गया था। उस महान संघर्ष के पीछे क्या छिपा है, स्वर्गदूतों को तब तक नहीं मालूम था। सिद्धांतों की जड़ को पूर्ण रूप से उखाड़ दिया गया था और मनुष्य की खातिर शैतान के अस्तित्व का रहना आवश्यक था। मनुष्यों के साथ साथ स्वर्गदूत भी प्रकाश के राजकुमार और अंधेरे के प्रधान के बीच के विरोधाभास को देख लें और चुनाव करें कि किसकी सेवा करनी है। उस महान संघर्ष के आरंभ में शैतान ने घोषित किया था कि परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत कठिन है, उनका पालन नहीं किया जा सकता है। न्याय तथा दया आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं और यदि आज्ञाएं तोड़ दी जाती हैं तो पापी को क्षमा मिलना असंभव है। शैतान ने कहा हर एक पाप को उसकी सजा मिलनी है और यदि परमेश्वर पाप के दंड को क्षमा कर देता है तो फिर वह सत्य और न्याय का परमेश्वर नहीं हो सकता है। जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उसकी इच्छा को अपवित्र कर दिया तो शैतान बहुत ही आनंदित हुआ था। उसने कहा अब यह साबित हो चुका है कि आज्ञाओं का पालन नहीं हो सकता है, मनुष्य को क्षमा नहीं मिल सकती है, क्योंकि वह विद्रोह के बाद स्वर्ग से निकाल दिया गया था। उसका दावा था कि मनुष्य जाति को सदा सदा के लिए परमेश्वर से दूर कर दिया जाए। उसका कहना था कि परमेश्वर पापियों के प्रति न्यायी और दयावान दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है। फिर भी पापी मनुष्य की स्थिति शैतान की स्थिति से भिन्न थी। लूसीफर ने परमेश्वर के महिमा के प्रकाश के सामने स्वर्ग में पाप किया था। उसके मुकाबले में किसी और सृष्टि किए हुए को परमेश्वर के प्रेम का प्रकाश नहीं दिया गया था, परंतु मनुष्य के साथ तो धोखा किया गया था। परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई और गहराई को वह नहीं जानता था। परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए उसमें उम्मीद थी। परमेश्वर के चरित्र को देखकर वह परमेश्वर की ओर वापस आ सकता था। यीशु के माध्यम से परमेश्वर की दया मनुष्यों पर प्रकट की गई थी। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। दूसरा कुरंथियों 5:19। व्यवस्था धार्मिकता चाहती है एक धार्मिक जीवन और एक संपूर्ण चरित्र की मांग जिसे मनुष्य स्वयं पूरा नहीं कर सकता था, परंतु मसीह एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर आकर एक पवित्र जीवन बिताया तथा अपने चरित्र को संपूर्ण बनाया था और जो भी उसे ग्रहण करता है उसे वह उस चरित्र को सेंटमेंट देने का वायदा करता है। उसका जीवन मनुष्यों के लिए एक आदर्श जीवन है। इस प्रकार से आज्ञा की धार्मिकता मसीह में विश्वास रखने वालों के द्वारा पूरी होती है। परमेश्वर जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला है। रोमियो 3:26। परमेश्वर के सिंहासन की नींव ही न्याय और उसके प्रेम का फल है। बाइबल कहती है भजन संहिता 85:10 में करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन किया है। अपने जीवन और मृत्यु द्वारा मसीह ने प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर का न्याय दया को नष्ट नहीं करता बल्कि पाप क्षमा कर देने के लिए आज्ञाएं धार्मिक हैं और संपूर्ण रूप से उनका पालन किया जा सकता है। यदि आज्ञाओं को बदलना या समाप्त करना संभव होता तो मसीह को मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु आज्ञाओं को घटाने बढ़ाने का परिणाम यह होता है कि आज्ञा उल्लंघन करना अमर हो जाता और संसार शैतान के नियंत्रण में चला जाता, क्योंकि मनुष्य केवल उनका पालन करने से ही बच सकता था और इसलिए मसीह को क्रूस पर बलिदान होना पड़ा था। परमेश्वर का चरित्र सारी सृष्टि पर उजागर हो चुका था। वे देखेंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था संपूर्ण और कभी ना बदलने वाली है और तब स्वर्गदूत मुक्तिदाता के क्रूस पर नजर रखकर आनंदित हो सकते हैं। यद्यपि वे उस समय पूरी बात को नहीं समझ पाए थे, परंतु इतना तो जान गए थे कि शैतान और पाप का विनाश सदा सदा के लिए अवश्य हो जाएगा और मनुष्य का उद्धार निश्चित है और पूरा विश्व अनंत काल के लिए सुरक्षित हो गया है। मसीह स्वयं अपने उस क्रूस पर बलिदान होने के परिणाम को पूर्ण रूप से समझ गया था। उस क्रूस पर टंगे हुए उसने इन सब बातों को देखा और जोर से बोला, पूरा हुआ। परमेश्वर का आज्ञा न्याय और प्रेम से भरा हुआ है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरने आया। परमेश्वर का आज्ञा अनंत काल तक रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह में उसकी शक्ति से परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकते हैं। हमें भी परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के प्रेम को पहचाने और यीशु मसीह को अपनाएं। प्रभु यीशु मसीह हमें शक्ति देंगे उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, और परमेश्वर हमें आशीष देगा और परमेश्वर हमें उद्धार करेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर संवाद के लिए कि तू हमसे प्रेम करता है। तू हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया। तेरा आज्ञा पवित्र है और धर्मी है और न्यायी है। पिता परमेश्वर, उसे मानने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करता है। मैं प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए अगुवाई कर, मदद कर, ताकि हम उसे अपना करके हम उद्धार पा सकते हैं और हमें तेरी आज्ञाओं को पालन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसका शक्ति दे। हमें पवित्र आत्मा का वरदान दे पिता, और हमें आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।
मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।